कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।
पिकनिक में मजा किया, आनंद आया आनंद सरोवर में। फिर पिकनिक से पढ़ाई में आ गए, हाँ कि अभी भी वहाँ है। ये ही अभ्यास जब चाहे कर्म में आ जाए, जब चाहे डिटैच हो जाए। एक रोल पूरा हुआ, दूसरे रोल में गए तो वो रोल का प्रभाव समाप्त हो जाए, नए रोल की तरफ फोकस हो जाए। बहुत सुंदर विषय पर हम विचार की लेन देन करने जा रहे हैं। हमारे जीवन में भाग्य और पुरुषार्थ, कर्म और फल दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पुरुषार्थ का अपना महत्व है, भाग्य का अपना स्थान है। हम स्वयं ही सोचता है, हम ही करता है, तो हम ही भोगता भी है। कर्म के संचित हिसाब किताब को ही भाग्य कहा जाता है। हम कहते हैं व्यक्ति अपना भाग्य अपने साथ लेके आता है। और प्रथम लेसन में आपने समझा कि जीवन भर जो कर्म हम करते हैं वही संस्कार बनते हैं, और आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है तो किए हुए कर्मों का हिसाब किताब संस्कार के रूप में साथ ले जाती है। इसलिए हम ही खुद के भाग्य विधाता हैं। परमात्मा हमें श्रेष्ठ भाग्य बनाने की विधि बताते हैं, पर श्रेष्ठ भाग्य बनेगा श्रेष्ठ कर्म की कलम से। आज के ही हमारे दैनिक डिस्कोर्स में ये बहुत सुंदर स्लोगन था कि श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण श्रेष्ठ कर्म की कलम से लिखना होता है। क्योंकि हम कर्म क्षेत्र पर है और आप सभी भी एक दो दिन में वापस अपने अपने कर्म क्षेत्र क्षेत्र पर जाएंगे तो कर्म की गति का ज्ञान समझना बहुत आवश्यक है। हम सभी चैतन्य शक्ति आत्मा है और चैतन्य शक्ति आत्मा शरीर धारण करने के बाद एक क्षण भी कर्म किए बिगर रह नहीं सकते। चैतन्य मीन्स क्रियाशील। जैसे ही फिजिकल ऑर्गन्स मिलते हैं कर्म शुरू हो जाते हैं। भल कोई संन्यास लेते हैं, घर बार छोड़ते हैं, परंतु संपूर्ण कर्म संन्यासी कोई भी नहीं बन सकता है। जंगल में जाना, वहां जाकर भी जीवन जीना, श्वास लेना, सोचना, देखना, तपस्या करना, ये भी तो कर्म है। इसलिए कोई भी संपूर्ण कर्म संन्यासी नहीं बन सकता। कर्म हमें करने ही हैं और जब कर्म करने ही हैं तो उनके फल भी भोगने ही हैं। जीवन माना ही कर्म करना और कर्म फल भोगना। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच जीवन की यात्रा है कर्मों का व्यापार, कर्मों की लेन देन। जब कर्म हमें करने ही हैं तो कर्म की बीज को भी समझ लेते हैं कि विचार ही कर्म का बीज है। दुनिया में आज जितनी भी चीजें, वस्तुएं, वैभव, साधन पदार्थ, हम इन आंखों से जो कुछ देख रहे हैं पहले मन में उत्पन्न होता है। इस हॉल में आप बैठे हैं, मान लो 10 साल हुए इससे बने हुए, 10 साल के कुछ महीनों पूर्व ये हॉल कहाँ था? कहाँ था? एक कागज पर नक्शे के रूप में था और उनके कुछ दिनों पूर्व वो एक आइडिया के रूप में किसी के मन में था। हम कह सकते हैं सारा विश्व मानव मन की रचना है। कहा जाता है युद्ध मैदान में होने से पहले मन में उत्पन्न होते हैं। विश्व में शांति लानी है तो मन में शांति धारण करनी है। विचार कर्म का बीज है। कर्म ही संस्कार बनते हैं। बार 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 जो कर्म में आता है वो संस्कार, आदत, टेंडेंसी बन जाता है। अगेन जैसे संस्कार, ऐसी इच्छाएं बार बार होती हैं, ऐसे विचार बार बार आते हैं। तो ये विचार कर्म संस्कार विचार का एक साइकिल है। हम इस वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर्स हैं। एक्टर मीन्स एक्शन करना, कर्म करना। हर आत्मा को इस वर्ल्ड ड्रामा में शरीर रूपी ड्रेस पहनकर, छोटा या बड़ा, मुख्य या गौण, अच्छा या बुरा, पार्ट प्ले करना ही होता है। सदा काल के लिए कोई भी आत्मा इससे छूट नहीं सकती। अक्सर भक्ति में मोक्ष की बात हम करते हैं कि हम इस दुनिया से छूट जाएं, जन्म मरण के फेरे से छूट जाएं, भगवान से मुक्ति मांगते हैं। पर सदा काल की मुक्ति कोई भी आत्मा की नहीं होती। चैतन्य माना ही कर्म क्षेत्र पर आकर कर्म करना है। हम क्यों जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं? कोई व्यक्ति एक्टर बनता है और ही वो क्या लक्ष्य रखता है कि धीरे धीरे मुझे हीरो एक्टर बनना है, मेजर रोल प्ले करने हैं। जिनको एक्शन ठीक करना नहीं आता सफल नहीं होते, वो फिल्म क्षेत्र से निकलना सोचेगा। इसी प्रकार हम ये मानते रहे कि जन्म मरण दुख का कारण है, पर सत्य ये है कि जन्म मरण दुख का कारण नहीं है। अज्ञानता के वश किए हुए गलत कर्म, पाप कर्म दुख और अशांति का मूल कारण है। हमें दुनिया से, जन्म मरण से, कर्म से छूटने की बात नहीं, हमें अज्ञानता से, देहाभिमान से, विषय विकारों से मुक्त होना है, विकल्पों और विकर्मों से मुक्त होना है, क्योंकि गलत कर्म दुख शांति का मूल कारण है। और जब हम बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं तो जीवन में ही मुक्ति का अनुभव होता है। हमें जीवन बंधन, बोझ, जंजाल महसूस नहीं होता है। हम कर्म करते, जिम्मेवारियां संभालते, संबंधों में रहते भी हम अपने आत्मिक स्थिति के आनंद में, सुख के अनुभव में रह सकते हैं। इसलिए परमात्मा आकर जब ईश्वरीय ज्ञान देते हैं तो जीवन मुक्ति का लक्ष्य देते हैं कि जीवन में रहते, संबंधों में रहते, कर्म व्यवहार में रहते, रोग, शोक, दुख, दर्द, विषय वासना, दुखों से मुक्त होना है। कर्म का सर्व सामान्य ज्ञान हम सभी भारतवासियों को है। हम सभी जानते हैं अच्छे कर्म का फल अच्छा बुरे का बुरा मिलता है। हम अपने जीवन में दुख और अशांति के फल खा रहे हैं, अंडरस्टूड हैं, गलत कर्म के बीज जाने अनजाने हमारे द्वारा बोए जा रहे हैं, तब तो दुख अशांति के फल मिल रहे हैं। इसलिए सदा काल का सुख और शांति चाहिए तो हमें अपने हर कर्म को सत्य बनाने का पुरुषार्थ करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है। बीज क्वालिटी होना चाहिए, अच्छे फल हर किसी को चाहिए, पर उसके लिए पुरुषार्थ अटेंशन तो बीज पर देना है ना, कि क्वालिटी बीज बोए और क्वालिटी पालना दी जाए तो क्वालिटी फल ऑटोमेटिक मिल रहे। कर्म और कर्म फल के बारे में भी हम सब जानते हैं। प्रकृति जगत का भी नियम है कि जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। हल्की क्वालिटी का बीज होगा, कितनी भी अच्छी खाद पानी धूप दो, हल्की क्वालिटी के बीज ही आएंगे। कर्म रूपी बीज श्रेष्ठ बनाना है। आम की गुठली बोएंगे तो आम का फल मिलेगा, नींबू के बीज बोएंगे तो नींबू मिलेगा। हर बीज का अपना पोटेंशियल है, हर बीज की अपनी संरचना है, वो वही फल देता है। जैसा कर्म ऐसा फल हम पाते हैं। जो करेगा वो पाएगा, मैं करूंगी मैं पाऊंगी, आप करेंगे आप पाएंगे, आप खाएं और मेरा पेट भर जाए ऐसा नहीं हो सकता है। कई बार विद्यालय में बहनें माताएं नियमित ज्ञान योग का अध्ययन करने आती हैं, हम उनके परिवार के सभ्यों को उनके पति को भी कहते हैं आप भी आइए आप भी ज्ञान योग का अभ्यास करें। वो कहते हैं नहीं नहीं हमारे घर से आ रहे हैं ना, वो कर रहे हैं, वो करेंगे वो पाएंगे, आप करेंगे आप पाएंगे। हरेक को अपने जीवन की नैया अपने कर्म के बल से पार करनी है। कर्म की शुद्धि के बिगैर वेद भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यहां लक्ष्य है, हमें पंडित विद्वान नहीं बनना है, हमें योगी बनना है, ज्ञान का स्वरूप बनना है। जितना करेंगे उतना पाएंगे। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है। हर कर्म रूपी बीज की अपनी शक्ति होती है, हर कर्म रूपी बीज का अपना फल आने का समय होता है। जैसे प्रकृति जगत में हर बीज का अपना पनपने का समय होता है। टमाटर मिर्ची के बीज बोएंगे, जल्दी उग जाएंगे, पौधा पनप जाएगा। आप नारियल आम वॉलनट बोएंगे, टाइम लगेगा, वृक्ष बनने में टाइम लगेगा। हर बीज की अपनी पनपने की शक्ति है। कोई एक बार फल देके खत्म हो जाते, कोई वर्ष 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 फल देते ही रहते। बस इस राज को न जानने के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। हर कर्म रूपी बीज का अपना समय है फलित होने का। अभी किया अभी रिजल्ट आ जाता है, हिसाब खत्म। पर कई कर्म का परिणाम आने में टाइम लगता है। वहां लोग सोचने लगते हैं कि हमने अच्छा किया, हमें तो अच्छा फल मिला ही नहीं, हमारे साथ तो बुराई हुआ। ये सोचकर लोग देखते हैं, सोचते हैं कि हम ऑनेस्टी से चलते हैं, सच्चाई से चलते हैं, सिंसियरली वर्क करते हैं, हम तो जैसे थे ऐसे ही रहे। जो बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, वो शाहकार बन गए। सोचते हैं छोड़ो सच्चाई को, ईमानदारी को, हम भी झूठ करेंगे। नम्रता से कहते हैं, सुनते नहीं हैं। दादागिरी से जो करते हैं उनका हर काम हो जाता है। तो लोग सोचते हैं छोड़ो नम्रता को, हम भी दादागिरी करें। धीरे धीरे आज हम अपनी अच्छाइयों को छोड़ते जा रहे हैं। बुराइयां, अवगुण, कमजोरियां, वाइसिस अपनाते जा रहे हैं। पर सत्य ये है, कर्म का फल मिलता ही है, आज या कल, अभी या बाद में, इस जन्म में या दूसरे जन्म में। जो कर्म किया उसका रिजल्ट तो आना ही है। हो सकता है परिणाम आने में टाइम लगे। इसलिए आपने देखा भी होगा कि गलत तरीके से कमा तो लेते हैं और उस धन से परिवार की पालना करते हैं। कोई एक ही बच्चा ऐसा निकलता है कि ये करे पर पानी फेर देता है, इज्जत खत्म करवा देता है, नाम बदनाम हो जाता है। जिस रास्ते से धन आता है उसी रास्ते से जाता है। गलत तरीके से कमाया हुआ धन गलत मार्ग पर ही ले जाता है। फिजूल खर्ची, गलत आदतें बढ़ जाती हैं, संस्कार बिगड़ते हैं, चरित्र बिगड़ते हैं। इसलिए थोड़ी सी धीरज, हिम्मत रखनी है। सत्य सत्य ही रहता है, चाहे कोई उसे ना माने, इससे वो असत्य नहीं हो जाता है। असत्य असत्य ही रहता है, भल सभी उसे मान ले, उससे वो सत्य नहीं हो जाता है। पर हमें थोड़ा धीरज, हिम्मत अपने आप में रखनी होती है। कर्म फल की इस गति को न समझने के कारण हम बहुत जल्दी अपने कर्मों को बिगाड़ देते हैं। आध्यात्मिकता वही शक्ति और संयम हमें देती है कि हम अपने आप में दृढ़ कैसे रहें, ताकि कर्म हम न बिगाड़े। क्योंकि कर्म में आना माना हिसाब किताब बन जाना, अच्छा या बुरा जो कुछ हम करते हैं हमारे साथ ही वो रहता है, कहीं जाता नहीं है। इसलिए थोड़ी सी व्याख्या भी हम समझ लें, किसको सत्कर्म कहते हैं, किसको पाप कर्म कहते हैं। सत्कर्म की सिंपल परिभाषा ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर कह सकते हैं कि आत्मा अपनी ओरिजिनल सत्य शुद्ध स्थिति में स्थित होकर परमात्मा स्मृति में परमात्मा ज्ञान के अनुरूप कर्म करती है, उसे सत्कर्म कहा जाता है। और उसके अपोजिट आत्मा विस्मृत होकर देहाभिमान के वश, विकारों के वश जो कर्म करते हैं वो पाप कर्म कहे जाते हैं। हम अपने हर साधारण कर्म को सत्कर्म बना सकते हैं। इसलिए ही परमात्मा आकर सत्कर्म करने की विधि सिखाते हैं और पाप कर्मों के हिसाब को भस्म करने का योग सिखाते हैं। पर करना तो हमें ही है, इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं ना सुख देता हूं ना मैं दुख देता हूं। मैं सुख का रास्ता बताता हूं, दुखों से छूटने की विधि बताता हूं, पर करना तो हमें है ना, क्योंकि पाना हमें है। भगवान करेगा तो भगवान पाएगा ना, हम करेंगे तो हम पाएंगे। इसलिए परमात्मा सत्य ज्ञान का प्रकाश देते। हिम्मत से कदम उठाते हैं वो हजार गुना मदद करते हैं, पर प्रथम कदम तो हमें ही उठाना है। इसलिए परमात्मा के कृपा आशीर्वाद मांगने की बात नहीं है, वो वो तो है ही कृपालु दयालु, वो सदा कृपालु है दयालु है। हमारे कहने से कृपा करता है ऐसा नहीं है, हमें अपने अच्छे कर्मों से उनकी कृपा को खींचना है खुद के लिए। वो तो है ही कृपालु दयालु, रहम दिल, कल्याणकारी, प्यार का सागर। इसलिए औरों की दया कृपा आशीर्वाद शक्तिपात से कहां तक हम चलेंगे। आध्यात्मिकता सिखाती है कि हमें अपने कर्मों के बल से अपने जीवन को पार करना है, अपनी गति सदगति का रास्ता बनाना। हम कहते हैं ना, अकेले आए हैं अकेले जाना है, माना अपनी आत्मशक्ति के आधार पर हमें अपनी गति बनानी है। हम मनुष्यात्माओं के कर्म के आधार पर सृष्टि का स्वरूप बनता और बिगड़ता है। हम रेस्पॉन्सिबल हैं। समस्त प्राणी जगत में इंसान को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली प्राणी कहा जाता है। अन्य पशु पंछी प्रकृति जगत हमें फॉलो करते हैं। हम इस वर्ल्ड ड्रामा में हीरो एक्टर हैं। हम आत्माओं की स्थिति बदलती हैं, ऐसे युग बदलते हैं। अक्सर हम कहते हैं दुनिया खराब है, जमाना खराब है। हम खराब है तब जमाना खराब हुआ है। रिस्पॉन्सिबल हम हैं। इसलिए जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, ये हमें अटेंशन में रखना है। हम कहते हैं ना आज की जनरेशन बिगड़ गई है, पर वो किसको देख कर बिगड़ गई है? जाने अनजाने हमारे कर्मों के द्वारा कोई ना कोई बुराइयां कम्युनिकेट होती हैं, तभी तो सब सीखते जाते हैं। जब हमारे कर्म श्रेष्ठ थे, आत्मा अपनी सत्य स्थिति में थी, प्रकृति सत्य थी, तो संसार सतयुग था। उस टाइम पीरियड को सतयुग कहते हैं। हम देवता थे, दुनिया स्वर्ग थी। हम अपने दैवी गुण और पवित्रता गंवाते हैं, हम साधारण मनुष्य बन जाते हैं और देहाभिमान के वश, विकारों के वश भ्रष्ट निकृष्ट कर्म करते हैं, तो हम ही असुर बन जाते हैं। और तब इस संसार को कलियुग नरक कहा जाता है। भाइयों और बहनों, स्वर्ग आसमान में नहीं है, नरक पाताल में नहीं है। देवताएं कोई काल्पनिक नहीं है, असुर कोई अलग योनि के प्राणी नहीं है। शास्त्रों में कहानियां सिंबॉलिक है, वास्तव में हम मनुष्यत्माएं ही जब संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न होते हैं तो हम ही देवी देवता कहे जाते हैं। आज भी घर में कोई शांत शीतल मधुर सुखदाई होता है तो हम कहते हैं ये तो हमारे घर में देवी है। देवी मीन्स दिव्य गुणों से युक्त आत्मा। और जब हम दिव्यता पवित्रता सत्यता गंवा देते हैं और विषय विकार के वशीभूत हो पाप कर्म करते हैं, खुद और औरों को दुखी करते हैं तो हम ही असुर कहे जाते हैं। ऐसे नहीं कोई बड़ी बड़ी लाल आंख वाले दांत वाले सिंग वाले कोई और भयानक प्राणी है असुर। हमें जब गुस्सा करते हैं, अहंकार दिखाते हैं, वैर द्वेष में आ जाते हैं, उस समय हम कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? कभी अपना चेहरा उस समय आईने में देखा है? हाँ, हम कैसे दिखते हैं? हम ही असुर जैसे बन जाते हैं। असुर राक्षस दानव दैत्य शैतान जो कहो वो आत्मा की नेगेटिव वृत्ति कर्म को कहा जाता है। मन में वैर द्वेष गुस्सा है चित्र में कैसे बताएं? तो ये भयानक चेहरे बना दिए है तो अंदर की वृत्ति और स्थिति ना। इसलिए कहते हैं ना दानव दैत्य मानव और योगी है तो चारों ही मानव शरीरधारी आत्माएं। वृत्ति में अंतर है। मेरा सो मेरा अपने पराये का भाव उनको मनुष्य कहते हैं। मेरा तो मेरा पर तेरा भी मेरा, दूसरों का हड़प लेना वो राक्षस है दैत्य है। औरों के अधिकार को छीन लेना, दूसरों का शोषण दमन करना ये असुरी प्रवृत्ति है। तेरा सो तेरा मेरा भी तेरा दैवी प्रवृत्ति देवता उसको कहते हैं। और अब न मेरा न तेरा जो कुछ है परमात्मा का है, हम निमित्त है ट्रस्टी है, ये योगी प्रवृत्ति है। इस कलियुगांत और सतयुगादि के संधि काल संगम युग में इस महापरिवर्तन की वेला के समय परमात्मा के आदेश पर जो आत्माएं योगी बनती हैं वो सतयुगी दुनिया में देवी देवता बनती। हमें ही देवता बनना है, हमें ही योगी बनना है। वर्ल्ड ड्रामा में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल टाइम पीरियड चल रहा है जब परमात्मा ज्ञान और शक्ति से, क्योंकि अब वर्ल्ड ड्रामा सतयुग की ओर चेंज हो रहा है, जो अपने आप को ऐसा सत्य श्रेष्ठ बनाएगा, परमात्मा आज्ञा मानने का फल सतयुगी दुनिया का सौभाग्य है। जब हम अपने नियम संयम मर्यादाएं तोड़ते हैं, हमारे प्रभाव से पशु पंछी प्रकृति भी लॉ एंड ऑर्डर में नहीं रहती हैं, उपद्रवी बन जाती हैं, तो ये संसार नरक कलयुग कहा जाता है। हम ऐसे ही कोई शरीर छोड़ते हैं तो कह देते हैं स्वर्ग सिदारा, पर स्वर्ग कहाँ है वो ही पता नहीं है, और वो स्वर्ग सिदारा तो हम कहाँ है, हम कहाँ है, वो तो हम रियलाइज करते ही नहीं। इसलिए ये बहुत अटेंशन हमें रखना है कि अगर संसार के वर्तमान स्वरूप को हम बदलना चाहते हैं, बेहतर सुखमय संसार बनाना चाहते हैं, तो हमें उसकी शुरुआत खुद से करनी है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। चैरिटी बिगिन्स एट होम। हमें खुद से घर से शुरुआत करनी है। दुनिया की वर्तमान स्थिति को देखकर कई लोग भगवान पर नाराज हो जाते हैं कि भगवान ने ऐसी दुखमय दुनिया क्यों बनाई। भगवान देखता नहीं है, भगवान पर नाराज हो जाते, ऐसी कैसी पापी दुनिया बनाए। गाते हैं ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाया, काहे को दुनिया बने, ऐसी धोखाधड़ी वाली दुनिया क्यों बनाए। पर भगवान ने ऐसी दुनिया नहीं बनाई, भगवान ने तो बहुत अच्छी बनाई थी, अपने जैसा हर इंसान बनाया था। समय और प्रकृति के प्रभाव में आकर हम पतित बन गए, दुनिया कलयुग नरक बन गई। परमात्मा को दोष देने की बात नहीं, आपके बाप दादा के बाप दादा के बाप दादा ने अपने जमाने में कोई मकान बनाया, जब बनाया तब तो नया ही बनाया था, पुराना थोड़ी बनाया जाता है, पुराना तो अपने आप होता है ना, जब बनाया तो नया ही बनाया था। पर समय और प्रकृति के प्रभाव में आकर आपके समय में वो मकान पुराना टूटा फूटा जर्जरीभूत हो गया, तो आप ऐसे थोड़ी कहेंगे हमारे बाप दादा के बाप दादा ने ऐसा कैसा सड़ा हुआ मकान बनाया। भाई उन्होंने ऐसा नहीं बनाया, वो ऐसा अब हो गया। परमात्मा ने ऐसी सड़ी हुई दुखमय दुनिया नहीं बनाई, उसने तो अच्छी ही बनाई थी, हर इंसान को देवता ही बनाया था। आज समय के चलते दुनिया पतित भ्रष्टाचारी बन गए। हमने अज्ञानता के वश देहभान में गलत कर्म करते करते आज ये दुनिया ऐसी बन गई। कुछ ही साल पहले के लोगों की बात हम जानते हैं कि वो आत्माएं इसी भूमि पर हमारे ही बुजुर्ग बड़े बाप दादा विल पावर वाले थे, अपने संकल्प के धनी थे, वचन के मालिक थे। प्राण जाए अरु वचन न जाए। आज हम हैं जो कहते रहते हैं, बात बात में बदल जाते हैं। हमें अपने शब्दों की कीमत नहीं, हमारा मन विचलित हो जाता है। आज हम कहने लगे कि लोग ऐसे हैं, जमाना ऐसा है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। हमारे ही बड़े इतिहास बताता है कि थी पावर, इसलिए परमात्मा से नाराज नहीं होना है। वो कोई हमारा बुरा नहीं करता है, वो कोई श्राप नहीं देता है। कहीं भगवान से डरते हैं कहीं देवी देवता का श्राप न मिल जाए। जो महान है वो कभी श्राप देते नहीं, और जो देते हैं वो महान है नहीं, वो श्राप लगता नहीं। इसलिए हमें कभी भी भय में नहीं रहना चाहिए, हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं। हमारे कर्म कमजोर हो जाते हैं तब हमें डर लगता है, ग्रह की दशा बैठ गई है, फलाना देवता प्रकोप हो गया है। हम डरते रहते क्योंकि कर्म में बल नहीं रहा ना। जब आत्मा शुद्ध सत्य शक्तिशाली है तो हमें भय डर दशा कुछ नहीं रहता है। हमारे कर्मों की दशा बैठी हुई है और कोई ग्रह की बात नहीं है। इसलिए वो दशा बैठ गई, कोई तंत्र कर लिया, मंत्र कर लिया, है ना, इस भय से निकल जाना है। हमारे कर्म यथार्थ हैं, कुछ भी हमें नहीं हो सकता। हमारे कर्म की लीला अनुसार आत्मा की चढ़ती कला उतरती कला होती है, और उसी के आधार पर संसार का उत्थान और पतन होता है। हम मनुष्य आत्माएं जो भी कर्म करते हैं उसका फल मनुष्य योनि में ही भोगता है। ये एक नया सत्य परमात्मा आकर बताते हैं कि हम कर्म से, चलन से, संस्कार से पशु जैसे बनते हैं, न कि शरीर से पशु। भक्ति में ये भय बताया गया कि चलो इस भय से भी लोग सुधर जाए, गलत काम न करें। पर सदियों से ये भावना भय फैलाया गया, पर फिर भी आज कलयुग आ गया है, क्योंकि भय से परिवर्तन नहीं होता, समझ से परिवर्तन होता। तो मनुष्य आत्मा, हम अब तक ये मानते रहे कि अगर हम पाप कर्म करेंगे तो 84 लाख पशु योनियों में भटकना पड़ेगा, फिर मानव जन्म मिलता है। मनुष्य पाप कर्म करता है, उसकी सजा भोगने के लिए उनको पशु योनि में धकेल दिया जाता है। ऐसी मान्यता अब तक चलती रही, परंतु मनुष्य आत्मा अच्छे बुरे कर्म का फल मनुष्य मनुष्य योनि में ही भोगता है, क्योंकि कर्म की भोगना की रियलाइजेशन मनुष्य को जितनी आ सकती है उतनी पशु को नहीं आ सकती, क्योंकि मनुष्य का विवेक जितना विकसित है इतना पशु का नहीं। आज एक पशु को डंडा मारने से जो फीलिंग नहीं आएगी वो एक गलत शब्द कहने से इंसान को बुरा लग जाता। मनुष्य का विवेक विकसित है, इसलिए कर्मों की सजा ही देनी हो तो मनुष्य योनि ही उत्तम है। इसलिए मनुष्य मनुष्य योनि में ही अपने अच्छे बुरे कर्म का फल भोगता है। आप देखिए, कई कुत्ते बिल्ली धनिकों के घर में कार बंगले में रहते हैं और कई इंसान भूखे नंगे फुटपाथ पर सोए रहते हैं। अब किसकी दुखमय स्थिति है, कहां कर्म की भोगना माना जाएगा। आज रेस के घोड़ों की संभाल इंसान रखता है, कौन कर्म भोगना की स्थिति में है। इसलिए पाप करेंगे तो पशु योनि में जाना पड़ेगा, गधा घोड़ा बंदर बनना पड़ेगा की बात नहीं है। हम ऑलरेडी पशु से भी बदतर बन चुके हैं, इस सत्य को रियलाइज करने की आवश्यकता। आज एक कुत्ता घोड़ा भी मालिक का खाकर मालिक को वफादार रहता है, इंसान जिसका खाता है उसी का खोदता है, उसी थाली में छेद डालता है। हैवान से भी बदतर बन चुके हैं। घर घर में ये स्थिति देखिए, हम एक दो के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए पाप करेंगे तो पशु योनि में जाना पड़ेगा की बात नहीं है, हम ऑलरेडी इसी स्थिति में पहुंच चुके हैं। इसलिए परमात्मा हमें पशु से मानव, सच्चा मानव, पवित्र योगी बनाते हैं और सच्चे मानव से संपूर्ण मानव देवी देवता बनाते हैं। क्योंकि देवी देवताओं की सही जीवन कहानी नहीं जानते हैं, हमने देवी देवताओं को भी विकारों के वशीभूत भ्रष्ट बता दिया, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई निर्विकारी संसार समय भी था। इसलिए ये मौका है मनुष्य से देवता बनने का। हम कहते हैं ना कि नरऐसी करणी करे वो श्री नारायण बन सकता है, नारी ऐसी करणी करे वो श्री लक्ष्मी बन सकते। वो कौन सी करणी करे वो कर्म की गति का गहन ज्ञान परमात्मा आकर हमें बताते हैं। और जब हम अपना वर्तमान श्रेष्ठ बनाते हैं तो अंडरस्टूड है कि भविष्य भी श्रेष्ठ बनना ही है। हमारा भाग्य श्रेष्ठ होना ही है। हमें बार बार कोई ज्योतिषी के पास जाकर हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने कर्मों को ही देख लो, अपना भविष्य पता चल सकता है। वर्तमान ही भविष्य का आधार है, इसलिए वर्तमान में हमारे मन वचन कर्म हम सही करेंगे तो हमारा भविष्य श्रेष्ठ बनना ही है। हमें कोई ज्योतिषी के पास जाने की और रोज सुबह उठकर राशि फल पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा वर्तमान हमारे ही भूतकाल का रिजल्ट है। क्योंकि स्वयं का सही ज्ञान नहीं है, स्वचिंतन स्वदर्शन करने का अभ्यास नहीं है, इसलिए जब भी कुछ होता है हम दूसरों को दोषित करते हैं उसके कारण हुआ, यही मेरे लिए विघ्न है, यही मुझे हमेशा डिस्टर्ब करते हैं। हम दूसरों को दूषित करते रहते हैं। सत्यता तो ये है कि हमारा किया हुआ ही हमारे सामने आता है। जब कर्म करते हैं हम अटेंशन नहीं देते हैं, कर्म फल भोगते हैं, तब सोचने बैठते हैं मेरे नसीब में ऐसा क्यों लिखा है, मुझे ऐसे लोग क्यों मिले हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तब हम सोचने बैठते हैं। जब कर्म करते हैं तो अटेंशन नहीं देते। और देखिए हम घंटों व्यर्थ नकारात्मक सोचते रहते। मुख से तो बहुत कम बात बताते हैं, मन में कितना कूड़ते रहते हैं हम। घंटों तेरी मेरी व्यर्थ बातें करते हैं, हम घंटों गलत कामों में लगे रहते हैं। जबकि कहा गया है तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, हमें स्वतंत्रता मिली है, हमें क्या करना है। हमारा कर्म पर अधिकार है, करना चाहे करे, न करना चाहे न करे, राइट रॉन्ग। पर कर्म फल पर अधिकार नहीं है, क्योंकि जो किया वो रिजल्ट तो भुगतना ही है, परिणाम को आप बदल नहीं सकते। क्योंकि कर्म का जो रिजल्ट आएगा वो तो आगे के माइनस प्लस होकर जो बचता है हिसाब वो मिलाकर आता है, भी आपने अगले मास बैंक से पिछले मास में बैंक से 2 लाख निकाला, आपका खाता डेबिट बोल रहा है, आपने 50,000 जमा किए और 50,000 जमा किए और 50,000 जमा किए, फिर भी आपका माइनस खाता बोल रहा है। आप कहेंगे मैं तो जमा कर रही हूँ ना, माइनस क्यों बोल रहा है? पर बैक फॉरवर्ड, हिसाब बैक फॉरवर्ड होता है। ऐसे ही हमारे कर्मों का है कि मैं अभी अच्छा कर रही हूँ पर मेरा पहले का हिसाब माइनस का है, तो मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा ना अच्छा करने पर भी। ये कर्मिक अकाउंट है। इसलिए लास्ट बात, जब ये महापरिवर्तन का समय है और स्वयं परमात्मा ऑलमाइटी आए हैं, हमें मौका है हम अपना टोटल चेंज कर सकते हैं, हम अपना अमूल परिवर्तन कर सकते हैं, अपने स्वभाव, संस्कार, वाणी, व्यवहार, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, सूक्ष्म भाव, भावना, विचार, वाइब्रेशन, ये हमारी इनर पर्सनालिटी है, उसको हम बदल सकते हैं और अच्छी बना सकते हैं। ये टोटल चेंज का समय है। टेम्पररी ऊपरी ऊपरी परिवर्तन समय अनुसार हम करते हैं, परंतु सिर्फ बाह्याचार नहीं है ना। जैसे कई बार हम बहुत अच्छा बोलते हैं, भावनाएं अच्छी नहीं होती। छुट्टी का दिन है, आराम से बैठे हैं, घूमने जाने का प्लान है और अचानक मेहमान आ जाते हैं, मुख से तो कहेंगे हाँ आइए आइए, हमें बहुत खुशी हुई, पर मन में क्या सोचते हैं, अंदर की भावना क्या होती है, ये कहाँ आ गए, ये दोहरापन है हमारे व्यक्तित्व में। और हमारा ये दोहरापन ही हमारे तनाव का कारण है, हमारी अशांति का कारण है। हम किसी का बहुत सत्कार सम्मान करते हैं, आओ भगत करते हैं, और फिर अंदर आपस में बात करते हैं कि अभी इनका सत्कार करो, फिर हमें इनसे बहुत काम निकलवाना है। तो बाह्याचार तो हम ठीक करना आज सीख गए हैं, पर अंदर की वृत्ति, भावनाएं बिगड़ गई है, हमें टोटल चेंज करना है। इसलिए आवश्यक है कि हम नियमित ज्ञान योग की साधना करें, स्वाध्याय करें, खुद पर गौर करें, ताकि हम अपने कर्म को श्रेष्ठ बना सके और अपने उच्च भाग्य का निर्माण कर सके। ओम शांति। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, कुछ क्षण स्वचिंतन करेंगे और फिर बहुत सुंदर गीत सुनेंगे। हमारा जीवन हमारी आंतरिक आत्मस्थिति का ही प्रतिबिंब है। जो अंदर है वो ही बाहर कर्म में आता है। अगर हमें बाह्य संसार को व्यवस्थित करना है हमें अपनी आंतरिक आत्मस्थिति को ही डिसिप्लिन्ड करना है, अनुशासित करना है। मुझे अपने आप को आध्यात्मिक रूप से ज्ञान गुण और शक्तियों से समृद्ध करना है। ओरिजिनली मैं आत्मा शांत हूँ, शुद्ध हूँ, सत्य हूँ। इसलिए मुझे जीवन में शांति चाहिए, सत्यता अच्छी लगती है, सच्चरित्रता पसंद आती है, पवित्रता अच्छी लगती है। मेरा अपना मूल आत्मस्वरूप शुद्ध सत्य है। मैं शांत और शीतल हूँ। मैं आत्मा सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप। परम चैतन्य परम सत्य सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा पिता की मैं अमर संतान हूँ। अपनी ये वास्तविकता ये ओरिजिनलिटी रोज बार बार रियलाइज करनी है, रिवाइज करनी है। साइलेंस में बैठ कर ये पाठ पक्का कर। सुख करता दुख हरता परमात्मा पिता की संतान मैं आत्मा, मुझे भी सुखदेव बनना है। जो देंगे वही हमें मिलेगा। सुख देंगे सुख मिलेगा, प्यार देंगे प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट देंगे रिस्पेक्ट मिलेगा। सहयोग देंगे सहयोग मिलेगा। इस कर्म क्षेत्र पर जो मैं दूंगी वही मुझे मिलेगा। हर क्षण हर संकल्प बोल और कर्म पर ये अवेयरनेस मुझे रखनी है। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान स्वयं दिव्य ज्योति अविनाशी चैतन्य शक्ति ओ ओम।